दुनिया जहान में इस हफ्ते। इंसानों में बर्ड फ्लू संक्रमण कितनी बड़ी चिंता का विषय है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। मार्च 2024 में अमेरिका के टेक्सास राज्य की एक गौशाला यानी डेयरी फार्म में एक गाय को बर्ड फ्लू हो गया और बाद में उससे एक श्रमिक भी इस वायरस से संक्रमित हो गया। कुछ महीने बाद 1000 मील दूर मिशिगन राज्य के 2 अलग डेयरी फार्मों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। इन 3 श्रमिकों में H5N1 यानी बर्ड फ्लू के वायरस का संक्रमण पाया गया। ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पहली बार बर्ड फ्लू का संक्रमण किसी मैमल यानी कि स्तनधारी प्राणी से मनुष्य में पहुंचा है, साथ ही पहली बार गायों में इस वायरस का संक्रमण पाया गया। ये श्रमिक ठीक तो हो गए, लेकिन तब से लेकर अब तक बर्ड फ्लू का संक्रमण अमेरिका के कई राज्यों के डेयरी फार्म में फैल गया है। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश करेंगे कि मनुष्यों के लिए बर्ड फ्लू कितनी बड़ी चिंता का विषय है।
पार्ट 1, डेयरी और पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू का प्रसार।
हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर एरीन सोरेल अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि आम लोगों को इससे खतरा बहुत कम है, लेकिन खेतों में जानवरों के साथ काम करने वाले लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। इस संक्रमण के बारे में एरिल सोरेल का कहना है कि गाय का दूध दुहते वक्त उसके स्तन से आंखों के जरिए ये संक्रमण हो सकता है, यानी संभवतः संक्रमित दूध को छूने के बाद उसने अपनी आंखों को छुआ होगा।
ऐसा लगता है कि पहले केस में मरीज को कंजंक्टिवाइटिस हो गया था, जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास गए। मिशिगन के दूसरे मामले में कंजंक्टिवाइटिस के साथ मरीज में खांसी और सांस लेने में दिक्कत के लक्षण भी देखे गए थे।
तो फिर इन मामलों में गायों के साथ बर्ड फ्लू का संबंध कैसे सामने आया?
कुछ
सतर्क वेटनरी या जानवरों के डॉक्टरों को पशुओं की बीमारी को देखकर अचरज हुआ, क्योंकि इन डेयरी के मवेशियों में पहले बर्ड फ्लू नहीं देखा गया था। उन्होंने जांच की तब इसका पता लगा।
डेयरी से आए दूध को पाश्चराइज किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध के भीतर कोई बैक्टीरिया या फंगस हो तो वो नष्ट हो जाते हैं, मगर कई जगहों पर बिना पाश्चराइज किया गया दूध भी बेचा जाता है, जिससे कुछ बीमारियों के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इस साल जून तक अमेरिका के लगभग 1 दर्जन डेयरी फार्मों के मवेशियों में बर्ड फ्लू के संक्रमण के कम से कम 100 मामले सामने आए। एरिन सोरेल के अनुसार मिशिगन राज्य ने टेस्टिंग और निगरानी बढ़ा दी और साथ ही डेयरी कामगारों को इस समस्या से अवगत कराने के लिए कई कदम उठाए, मगर अन्य अमेरिकी राज्यों में इस समस्या से तत्परता से नहीं निपटा जा रहा है। एरीन सोरेल कहती हैं कि खेतों में या डेयरी फार्म में काम करने वाले श्रमिकों को खतरा रहता है, क्योंकि इन्हें बीमारी के लक्षण सामने आने पर भी अपनी जांच करवाने के लिए छुट्टी नहीं मिल पाती, ना ही उन्हें वो चिकित्सा सुविधाएं मिल पाती हैं जो एक आम औसत अमेरिकी नागरिक को मिलती हैं। इसकी वजह से H5N1 की रोकथाम करने के लिए जो जाँच और दूसरे कदम उठाने होते हैं वो इनके मामले में मुश्किल साबित होते हैं। अमेरिकी केंद्रीय रोग नियंत्रण संस्था के आंकड़ों के मुताबिक बर्ड फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर एरीन सोरेल ने बताया कि मार्च से अब तक कम से कम 45 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है और लगभग 550 लोगों को बर्ड फ्लू से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने की वजह से निगरानी में रखा गया है। हालांकि ये तादाद बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन स्थिति का सही अंदाजा तभी लगेगा जब टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी।
I think it's quite urgent. Those individuals deserve proper treatment.
संक्रमित लोगों की सही जांच और इलाज बेहद जरूरी है। बाद में ये वायरस और म्यूटेट हो सकता है या नए रूप में तब्दील हो सकता है। हमने अभी इस दिशा में कदम नहीं उठाए तो मनुष्यों में एक दूसरे से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ सकता है। अगर इसे रोकना है तो हमें अभी कदम उठाने चाहिए।
पार्ट 2, फिट वायरस।
हमारी दूसरी एक्सपर्ट वेंडी बार्कले वायरस का अध्ययन करती हैं और लंदन के इंपीरियल कॉलेज की प्रोफेसर हैं। वो बताती हैं कि बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक प्रकार है, जो आमतौर पर बत्तख और हंस जैसे जंगली पक्षियों या समुद्री पक्षियों को संक्रमित करता है।
लेकिन जब बर्ड फ्लू मुर्गियों जैसे पालतू पक्षियों को संक्रमित करता है तब वो बड़ी समस्या बन जाता है। पक्षियों के लिए ये वायरस बेहद खतरनाक होता है क्योंकि इससे उनकी मौत जल्द हो जाती है। इसके संक्रमण से पूरा पोल्ट्री फार्म नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य में इसका संक्रमण होता है तो ये उनके श्वसन तंत्र में पहुंचता है, लेकिन पक्षियों में ये पूरे शरीर में फैल जाता है और उनके मस्तिष्क और खून को संक्रमित कर देता है, जिससे पक्षियों की मौत हो जाती है।
मगर H5N1 अपनी तरह का अकेला वायरस नहीं है, इसके 16 प्रकार या वेरिएंट हैं। इसी वायरस का एक वेरिएंट H2344B पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के जानवरों में फैल रहा है और अमेरिका के डेयरी फार्मों में इसी के एक वेरिएंट का संक्रमण फैल रहा है।
So it seems to be a very hardy and resilient virus in a particular...
लगता है कि ये अत्यंत जीवट वायरस है जो पक्षियों के जरिए दूर दूर तक पहुंच रहा है। ये बहुत ही फिट वायरस है। ये एशिया से यूरोप और अटलांटिक सागर पार अमेरिका तक पहुंच गया है। दक्षिण अमेरिका में इससे केवल समुद्री पक्षी ही नहीं बल्कि सील जैसे स्तनधारी प्राणी भी संक्रमित हो रहे हैं। सील कई बार मरे हुए संक्रमित पक्षियों को खाती है जिससे उनमें भी ये वायरस पहुंच जाता है।
लेकिन मनुष्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण के मामले पहली बार सामने कब आए?
1997
में चीन की मुर्गा मंडियों में इसके मामले बड़ी संख्या में सामने आए। तब वहाँ मनुष्यों में इसका संक्रमण फैलने की रिपोर्टें आई थी। चीन में जिन 18 लोगों में बर्ड फ्लू का संक्रमण हुआ था उनमें से 6 की मौत हो गई। ऐसी वारदात पहले कभी नहीं हुई थी। ये स्थिति साल 2000 से 2005 तक जारी रही।
इसके बाद संक्रमित मुर्गियों की वजह से इंडोनेशिया और वियतनाम में भी बर्ड फ्लू फैला जिससे सैकड़ों लोग संक्रमित हुए। वेंडी बार्कले कहती है कि उस समय ये वायरस हवा के जरिए नहीं फैल रहा था, यानी जो लोग संक्रमित मुर्गियों के संपर्क में आए उन्हीं को ये बीमारी हुई, मगर किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी का संक्रमण नहीं हुआ जिसकी वजह से ये महामारी का रूप नहीं ले पाई। आज भी वही स्थिति है। वेंडी बार्कले कहती है कि जंगली पक्षियों में इस वायरस का संक्रमण जारी रहा और ये वायरस अपना रूप बदलता रहा, विकसित होता रहा। 2022 में एक बार फिर इसका संक्रमण बढ़ने लगा, मगर पक्षियों से गायों में इसका संक्रमण कैसे पहुंचा इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है।
पार्ट 3, प्राणियों की नई प्रजातियों में संक्रमण।
हमारे तीसरे एक्सपर्ट डॉक्टर एड हेचिसन एक वायरोलॉजिस्ट हैं और ग्लासगो की MRC यूनिवर्सिटी में सीनियर लेक्चरर हैं। वो कहते हैं कि जब वायरस का संक्रमण प्राणियों की एक प्रजाति से दूसरी में होता है तो वायरस का रूप बदल जाता है।
Unlike other pathogens, they're not just feeding on.
अन्य पैथोजन के विपरीत जब वायरस किसी दूसरी प्रजाति के प्राणी में प्रवेश करता है तो वह उसे खाने लगता है और उसकी कोशिकाओं पर कब्जा जमा कर वहाँ नए वायरस बनाना शुरू कर देता है। लेकिन वायरस के लिए नई प्रजाति के अनुसार अपने आप को ढालना आसान नहीं होता। H5N1 वायरस के बारे में भी यह लागू होता है। वायरस को अपने आप को नई प्रजाति में जीने के लायक ढालने में कई साल लग जाते हैं, जो कि हमने इस वायरस के बारे में भी पाया है। लेकिन एक बार वो ऐसा करने में समर्थ हो जाए तो उसका स्वरूप बदलने लगता है और नई प्रजातियों और मनुष्यों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
तो आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं?
Well, I think there are... 3 concerns which have been on.
इसे लेकर कई चिंताएं हैं, जिसमें से एक है इसका इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाला प्रभाव। पिछले 2 सालों के दौरान हमने देखा कि समुद्री तटों पर समुद्री पक्षियों को इस वायरस से काफी नुकसान पहुंचा था। अब यही संक्रमण अंटार्कटिका में समुद्री पक्षियों में भी हो रहा है। वहीं दक्षिण अमेरिका के तटों पर सील जैसे स्तनधारी प्राणियों में भी बर्ड फ्लू का संक्रमण बढ़ रहा है। दूसरी चिंता मवेशियों में इस वायरस के संक्रमण की है, जिसकी वजह से वायरस की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर मवेशियों को नष्ट करने की जरूरत पड़ सकती है।
और मनुष्यों को इस वायरस से कितना खतरा है?
Most direct threat as far as could pose to humans.
अगर ये वायरस मनुष्यों के भीतर आसानी से जीने के लिए अपने आप को ढाल लेता है तो मनुष्यों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। अभी तक तो बर्ड फ्लू का शिकार वो लोग हुए हैं जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में थे, लेकिन अगर ये वायरस मनुष्यों के भीतर पलने के लिए अपने स्वरूप को ढाल ले तो फिर संक्रमित मनुष्यों से दूसरे मनुष्यों में संक्रमण होने लगेगा, जो कि महामारी की शुरुआत होगी। फिलहाल तो ऐसा नहीं हो रहा।
मगर क्या इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
That's, I think, a really challenging question. So, in terms of containing H5N1
का ज्यादातर संक्रमण जंगली पक्षियों में होता है, इसलिए उनमें इसके संक्रमण की रोकथाम बहुत मुश्किल है। लेकिन उन पक्षियों से हम तक ये संक्रमण ना पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में पर्यटन को सीमित किया जा सकता है। प्रभावित इलाकों की निगरानी और वहां से मिलने वाले डेटा का आदान प्रदान बहुत जरूरी है, जो कि कई कारणों की वजह से आसान नहीं रहा है। दूसरी संभावना ये है कि ये वायरस अपने आप कमजोर होकर खत्म हो जाएगा, या मवेशियों में इसके खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। मनुष्यों में इसके संक्रमण और महामारी जैसी स्थिति को टालने के लिए समन्वय के साथ व्यापक कदम उठाए जाने की जरूरत है।
पार्ट 4, फ्लू फाइटर्स।
हमारे चौथे एक्सपर्ट डॉक्टर मार्क एलन विडोसन यूरोप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाई थ्रेट पैथोजन ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में इस प्रकार के संक्रमण से निपटने में बड़ी चुनौती यह है कि इसमें कई समूहों और लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है।
You want the public health stakeholders who are primarily involved with human health.
इस संक्रमण की रोकथाम में स्वास्थ्य संगठनों की अपनी राय होती है, फिर प्राणियों के स्वास्थ्य से जुड़े गुट हैं, कृषि उद्योग से जुड़े गुटों के अपने हित हैं, साथ ही राजनीतिक गुटों के हित भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन सब के साथ मिलकर काम करना पड़ता है।
बर्ड फ्लू की बीमारी से मुर्गियों की जल्द मौत हो जाती है और संक्रमण का पता चल जाता है। मार्क एलन कहते हैं कि मवेशियों में इस वायरस के संक्रमण का पता जल्द नहीं चलता, क्योंकि बर्ड फ्लू से संक्रमित गाय कुछ बीमार और थकी हुई नजर आती है और उसका दूध फट जाता है। लेकिन वो इतनी बीमार नहीं होती कि किसान या डेयरी फार्म के कर्मचारी उसकी जांच करें। उन्हें इस बारे में ज्यादा जागरूक होना होगा। H5N1 वायरस से दुनिया भर में लाखों पक्षी मारे जा रहे हैं। वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया उन गिने चुने देशों में हैं जिन्होंने पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों समेत पाले जाने वाले सभी पक्षियों को वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है।
So it can be done. It's not straightforward because...
ये काम निश्चित ही किया जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि एक एक मुर्गी को पकड़कर वैक्सीन लगाना मुश्किल भी है और महंगा भी। ये करने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या संक्रमण का खतरा इतना बड़ा है कि उसकी रोकथाम के लिए इतना खर्च उठाया जाए।
सीजनल यानी मौसमी फ्लू से बचने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो बर्ड फ्लू को नहीं रोक पाएंगे, मगर बर्ड फ्लू के वायरस से मनुष्यों को बचाने के लिए कुछ वैक्सीन तैयार हो चुकी है। इस साल जून में फिनलैंड ने घोषणा की कि वो ऐसे हजारों कर्मचारियों को ये वैक्सीन देगा जिनका संक्रमित प्राणियों से संपर्क होने की आशंका है। ये कदम उठाने वाला वो दुनिया का पहला देश है। मार्क एलन कहते हैं कि फिनलैंड ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि वहाँ कुछ जगहों पर बड़ी मात्रा में बर्ड फ्लू का संक्रमण हुआ जिससे कामगार प्रभावित हुए। मगर अमेरिका में गायों में बर्ड फ्लू के संक्रमण से क्या दूसरे देशों को भी चिंता करनी चाहिए?
Yes, I think so. Largely because we now know a lot more.
और देशों के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ये बीमारी एक गाय से दूसरी गाय में फैल रही है तो संक्रमण जितना बढ़ेगा ये वायरस उतना ही विकसित होता जाएगा और संक्रमित स्तनधारी प्राणियों में इससे सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाएगी। ये महामारी का रूप धारण कर लेगा। जिस तरह अमेरिका में ये पक्षियों के माध्यम से गायों में पहुंच गया, वैसा ही यूरोप में भी हो सकता है। मनुष्यों में इसका संक्रमण चिंता का विषय है। यूके में पिछले 4 सालों में H5N1 के 5 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक एक व्यक्ति से दूसरे में इस वायरस का संक्रमण होता नहीं दिखा है। लेकिन आगे अगर मनुष्यों में एक दूसरे के माध्यम से ये बीमारी फैलने लगी तो स्थिति खतरनाक हो जाएगी।
तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि मनुष्यों के लिए बर्ड फ्लू कितनी बड़ी चिंता का विषय है। पहले भी H5N1 का संक्रमण स्तनधारी प्राणियों में पाया गया है, लेकिन अब संक्रमित जानवरों के साथ काम करने वाले मनुष्यों में भी संक्रमण फैलने लगा है। हालांकि अभी भी ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। आम लोगों को इससे खास खतरा नहीं है, लेकिन मवेशियों और पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की देखभाल करने वाले कामगारों को खतरा जरूर है। डेयरी और पोल्ट्री फार्म में लगातार निगरानी और जांच के माध्यम से इसकी रोकथाम में मदद मिल सकती है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। डॉक्टर मार्क एलन विलोसन की राय है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है।